awakening to a new way of living.
नमस्कार, ओम शांति, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के इस अनूठे प्रयास में आप सभी दोस्त हमारे तीसरे दिन भी जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों जो भी बातें हमने सुनी हैं वो सब हमारे लिए लाभदायक हैं। उन सभी चीजों को लाइफ में इनकलकेट करना आसान है, ये चीज हमने समझा है। आज के तीसरे दिन की सुबह में हमारे साथ कई ऐसे वक्ता हैं जो आपसे मुखातिब होंगे। आशा करते हैं आप भी इन सेशंस को एंजॉय करेंगे। आज के हमारे वक्ता ब्रह्मा कुमार स्वामीनाथन जी हैं। इनका विषय है हाउ टू मेक माइंड स्टेबल। हम सभी इस बदलाव के दौर में अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेबिलिटी हम सभी चाहते हैं, मगर अपने आप को स्टेबल कैसे किया जाए इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमार स्वामीनाथन जी पेशे से एक प्रोफेसर रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से उन्होंने राजयोग का अभ्यास किया है और हजारों लोगों को उनके जीवन में मेमोरी मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट में रिलेटेड अनेकों व्याख्यान दिए हैं। युवाओं के साथ ये बहुत ही पॉपुलर और बच्चों में बेशक पसंद किए जाने वाले व्यक्तित्व के रूप में देखे गए हैं। इनके वक्तव्यों को, इनके भाषणों को बड़े ही चाव से लोग सुनते हैं। इनका अनूठा अंदाज, इनके एंथुजियाज्म को आप सभी भी अप्रिशिएट करेंगे। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमार स्वामीनाथन जी से।
ओम शांति और नमस्कार। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू सी ऑल ऑफ यू एंड आई एक्सटेंड अ वेरी वेरी हार्टी वेलकम। आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक मजबूत बिल्डिंग के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। अ स्ट्रांग बिल्डिंग रिक्वायर्स एन इक्वली स्ट्रांग फाउंडेशन एंड टू गेट अ स्ट्रांग फाउंडेशन इंजीनियर्स कीप ऑन एक्सकावेटिंग द अर्थ till they're able to find very strong, very stable earth or rocks. कभी कभी जब हम ब्रिज से यात्रा करते हैं ना, तो वो नदी या सागर को देखते हैं और हमको लगता है ये ब्रिज इतना स्ट्रांग कैसे बना। थोड़ा सा अगर हम इस पर विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उस सागर या नदी के उस सतह तक लोग पहुंचते हैं जहां पर वो स्टेबिलिटी होती है और उस स्टेबल भूमि पर से वो पिलर्स को उठाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। इट इज सेड व्हेन स्टेबिलिटी बिकम्स अ हैबिट, मैच्योरिटी एंड क्लैरिटी ऑटोमेटिकली कम्स इनटू अ लाइफ एंड दैट इज द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, बींग स्टेबल द मंत्रा फॉर लाइफ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय मंत्रा। मंत्रा मीन्स मन प्लस तंत्र, अर्थात मन को स्टेबल कैसे रखें, उसका तंत्र, उसका टेक्नोलॉजी, उसका फिलॉसफी, द साइंस, द प्रोसेस, द मैकेनिज्म, द फ्लो चार्ट। एंड देयरफॉर टुडे लेट्स लिसन टू अ वेरी वंडरफुल मंत्रा विच विल हेल्प डायरेक्ट आवर थॉट्स टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट। चलिए हम ये सुंदर सा मंत्र सुनते हैं।
समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः।
दोस्तों, अभी हमने सुंदर सा मंत्र सुना जहां पर स्थिर मन क्या होता है हमने समझा, राइट? सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, राइट? ठंडी गर्मी में भी मेरा मन हलचल में ना जाए, मेरा मन अचल रहे, अडोल रहे, और उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे मन को हम अचल अडोल चित्त प्रज्ञ कैसे करें, और उसके लिए आज हम फिजिक्स को भी समझेंगे और मेटाफिजिक्स को भी समझेंगे। कहते हैं वेयर फिजिक्स एंड्स मेटाफिजिक्स स्टार्ट्स। हम उस विज्ञान को समझेंगे और उस विज्ञान के आधार पर अपने जीवन में हम कैसे अप्लाई करें, वो भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी व्हाइल वी आर सिटिंग। जब हम बैठते हैं तो हमारा जो शरीर का जो वेट है वो नीचे एक्ट करता है थ्रू ग्रेविटी, और हमारी पृथ्वी जो होती है वो नॉर्मल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसके कारण हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब हम बैठते हैं वो स्थिरता का विज्ञान को हमने महसूस किया, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, कैसे एक्शन और रिएक्शन के बीच में वो मैनेजमेंट होता है जिसके कारण हम स्थिर रहते हैं, राइट? अब हम लोग इसको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के रूप में, प्रयोग के रूप में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक मार्कर पेन है एंड दिस इज अ मोबाइल फोन। अब इस मोबाइल फोन को मुझे स्टेबल रखना है, इसका अपना एक वेट है, तो अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी विल पुल इट डाउन, और इस मोबाइल फोन को मुझे इस मार्कर पेन में ऊपर स्टेबल करना है, राइट? तो देखिए, मैं कोशिश करता हूं, यस, सो द मोबाइल फोन इज एब्सोल्युटली स्टेबल एंड इट इज स्टैंडिंग वेरी स्टिल ऑन दिस व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन। ओके, जब मैंने ये प्रोसेस किया तो मुझे दो चीज जानना बहुत जरूरी था। एक, मुझे वो पॉइंट ढूंढना था वेर इन द एंटायर रिजल्टेंट फोर्सेस, जो इस मोबाइल का जो सारा वेट कहां पर है वो पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरत है, और उस पॉइंट को ढूंढकर उस जगह पर जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, उस जगह पर मैं एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब देता हूं तब ये मोबाइल इस मार्कर पेन के ऊपर स्टेबल बैठता है, राइट? दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब इसको जीवन में हम यूज करने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर हम समाज में देखते हैं और हमारी मन की अवस्था को थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे तो चारों तरफ डर, भय, देयर इज सो मच ऑफ फियर, स्ट्रेस, टेंशन, इनसिक्योरिटी, मन इतना हलचल में है, और ऐसा मन जो इतना हलचल में है उस मन को हम स्टेबल करने के लिए दो बातें पता लगाना जरूरत है। एक, द पॉइंट वेर इन ऑल दिस फोर्सेस, क्योंकि जो संकल्प है ना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एनर्जी, इट इज समथिंग वी कॉल इट इज अ थॉट एनर्जी। तो कौन सा पॉइंट है जहां पे सारा जो ये एनर्जी फोर्सेस एक्ट कर रहा है, और उस जगह पर एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देंगे तो मेरा मन शांत, शीतल और स्थितप्रज्ञ की तरफ जा सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि वो पॉइंट कौन सा है। अक्सर हम कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, और आज हमारा टॉपिक है बीइंग स्टेबल। अब हमने देखा जब हम बैठते हैं तो शरीर का जो वेट नीचे एक्ट करता है वहां पर एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगा तो हमारा शरीर स्टेबल हो सकता है। यहां तो हम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो सारा संकल्प शरीर में एक्ट नहीं कर रहा है, हाँ शरीर में उसका इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन द बीइंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर हमको यह समझना जरूरी है कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति है, द बीइंग, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, ये वर्षों से हमने काफी बार सुना है, आपके लिए और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा जो डर, तनाव और स्ट्रेस जो है, दैट इज अ फियर ऑफ डेथ। मैं 2-3 महीने से जब पेरेंट्स और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मुझे ये फीडबैक मिला है, काफी पेरेंट्स ये कहते हैं अगर लॉकडाउन खत्म भी हो गया और उस स्कूल में जाने का परमिशन भी अगर दिया गया तो मैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजूंगी, क्योंकि माता पिता को बच्चों से इतना स्नेह प्यार, लेकिन स्नेह प्यार के साथ ये बहुत बड़ा चिंता, डर, भय। इसे ऐसे समय पर जो मृत्यु के डर और भय को निकालने के लिए, चलिए दोस्तों हम एक बहुत अच्छा सा मंत्र सुनते हैं।
न जायते मियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
सो माय डियर फ्रेंड्स, वी हर्ड दिस वंडरफुल मंत्र विच स्पीक्स अबाउट, हमको ये बताया जाता है कि आत्मा अमर है, अजय है, अविनाशी है। तो मुझे लगता है ऐसी विकट परिस्थिति में हम आराम से बैठें और इस बात को महसूस करें। सबसे पहले बात कि मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूं जो अमर हूं, जो अविनाशी हूं। और जब ये रियलाइजेशन होने लगता है, आई एम श्योर our mind would start becoming stable. This is the first step of meditation. Now let's go on to the second phase. लेकिन ऐसे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो जिनकी responsibilities बाहर है, and at this particular time I would love to express an attitude of gratitude to the doctors, to the nurses, to the paramedical staff, to the administration, to those people who are responsible for cleaning, hygiene, and many people. अब इनको तो बाहर जाना है ना। जब हम बाहर जाते हैं तो वहां पर हम अपने मन को कैसे स्टेबल करें, इसका हम पहले फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक जगह बैठे हैं तो शरीर स्टेबल होता है, लेकिन जब हम चलते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं और कैसे हम स्टेबल बनते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाइल वॉकिंग व्हिच आर ऑल द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन अस। एक तो हमारा वेट होता है, पृथ्वी के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन जो रास्ते का होता है रोड में, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए वी हैव आवर इंटरनल फोर्सेस, आवर मस्कुलर फोर्सेस। तो अभी हमने देखा कि चलते वक्त कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, राइट? हमारा वेट और पृथ्वी जो नॉर्मल रिएक्शन दे रही है उससे तो बैलेंस होता ही है, लेकिन हम चलते कैसे हैं तो उसमें हमने देखा एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मतलब हमारा जो धरती के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है तो वहां पर एक फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज बैड, इट हेल्प्स अस टू मूव, राइट? लेकिन हम आगे तब चल पाते हैं जब हमारी जो शारीरिक शक्ति है, हमारा जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, वो जब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता है तब हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी दैट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ वॉकिंग थ्रू साइंस और थ्रू फिजिक्स। ओके, उसी तरह दोस्तों जब आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हो, आई डू अंडरस्टैंड द लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां हमारे पास है, लेकिन हम तभी इस जीवन रूपी यात्रा में इस चुनौतियों को पार कर सकेंगे जब हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं या हमारे जीवन व्यवहार में, वो कौन कौन से फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, राइट? ये फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हमारे इस जीवन व्यवहार को रोकने की कोशिश करते हैं और जिसको हमको ओवरकम करना है। तो आप सबके लिए एक बहुत प्यारा सा मंत्र मैं लेकर आता हूं, जिस मंत्र को हम सुनते हैं और हम ये महसूस करेंगे कि ये कौन कौन से हमारे जीवन में ये फ्रिक्शनल फोर्स है, चैलेंजेस हैं, जिसको हमें ओवरकम करना है।
त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम् नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजे एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परं गतिम्।
तो तो दोस्तों इस सुंदर से मंत्र में हमने जाना कि हमारे जीवन का जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट या फ्रिक्शन है वो नेगेटिव एनर्जी है, जिसको बॉडी कॉन्शियसनेस या लस्ट कहते हैं, क्रोध है, लोभ या ग्रीड कहते हैं। और इस फ्रिक्शनल फोर्सेस को जब हम ओवरकम करते हैं बाय बीइंग गुड, राइट, हमारे अंदर जब धीरे धीरे जब हम दिव्यता को लेकर आते हैं तो हम जीवन में बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं। तो चलते वक्त कर्म क्षेत्र पर हम स्टेबल रहने के लिए हमें इन इंटरनल फोर्सेस को बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है कि दो दिन पहले मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। ड्राइव करते वक्त हमने देखा कि रास्ते में सभी लोग मास्क पहने थे, तो मेरा फ्रेंड ने कमेंट किया, देखो देखो सभी लोग मास्क पहन रहे हैं। तो मैंने कहा कि सभी लोग मास्क पहने हैं तो इससे हमको जीवन में क्या सीखने को मिलता है। तो मेरा गुड फ्रेंड पीछे बैठा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी भाई हमने जीवन में इतने गलत कर्म किए हैं कि आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और जैसे ही इस दोस्त ने कहा मुझे इतनी हंसी आई, तो मैंने कहा दैट इज वेरी वेरी ट्रू, लेकिन इसमें हम कौन सी एक नई बात सीख सकते हैं। तो मेरा बाजू जो दोस्त बैठा था उसने बड़ी वंडरफुल बात कही, नहीं पूरा चेहरा तो ढका नहीं है ना, अभी एक चीज जिसके द्वारा हम देख सकते हैं वो है हमारे नेत्र, अवर आईज। और फिर उन्होंने कहा, कैन वी मेक आर आईज वेरी पीसफुल, वेरी प्योर एंड सर्टनली फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों हम लोग जो पूरा मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, इट इज थ्रू आर आईज। इसलिए कहते हैं ना, आंखों ही आंखों से प्यार भी हो जाता है और आंखों से ही क्रोध भी नजर आता है। और फिर मैंने कहा एटलीस्ट प्रकृति ने हम मनुष्यों को ये थोड़ा तो समय दिया है जहां पर उन्होंने हमारे नेत्र को यूज करने की एक परमिशन दी है। तो क्या दोस्तों हम अपने उस दृष्टिकोण को रूहानियत बना सकते हैं? कैन वी मेक अ पर्सपेक्टिव वेरी वेरी स्पिरिचुअल? इसे जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो हम हर व्यक्ति के उस मस्तक मणि को देखें, एंड थ्रू आवर आईज वी कैन कम्युनिकेट दैट आई द बीइंग इज वेरी वेरी पीसफुल। जब हम अपने उस डिवाइन क्वालिटीज पीस के बारे में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली द वाइब्रेशंस ऑफ पीस विल ऑल्सो फ्लो फ्रॉम आर आईज एंड सर्टनली फ्रॉम आर फोरहेड ऑल्सो। सो पीस आई द बीइंग इज वेरी वेरी प्योर एंड आई द बीइंग इज वेरी वेरी पावरफुल। इसे मुझे लगता है कभी कभी जब हम लोग मेडिटेशन में बैठे ना तो ये आप जरूर अभ्यास कर सकते हैं, एटलीस्ट घर में बैठे। तो मैं चाहूंगा आप सभी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर डॉक्टर्स, माई डियर वंडरफुल पीपल हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो मैं चाहता हूं आप बच्चों को ये जरूर सिखाना कि जब वो बैठे तो अपने पास वो मिरर ले। आजकल तो बच्चे कितना ज्यादा सेल्फी भी खींचते हैं, सो सेल्फी जब हम खींच रहे हैं तो मास्क के द्वारा खींचने से कैसे मजा आएगा, लेकिन जब हम मास्क पहने भी हैं तो उनको कहना आपके आंखों में वो शांति, वो पवित्रता, वो शक्ति नजर आ रही है। एंड दिस कैन इजिली बी पॉसिबल व्हेन वी गेट इन टच विद अ डिवाइन इनेट क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ। मे बी नेचर हैज गिवन अस अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर दिस कंसेप्ट एंड टू एक्सपेरिमेंट दिस कंसेप्ट, राइट? तो एक हो गया बैठकर, दूसरा है जब हम कर्म क्षेत्र पर वॉकिंग, जो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले रहे हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी को हम देखेंगे। जब मैं एक बार अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, उनको मैं फ्रिक्शन और ये सब सिखा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर एक बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछा, सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ डज एन एरोप्लेन रिमेन स्टेबल इन हाई स्काइज? नाउ दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिटिंग के बाद वॉकिंग, एंड लेट अस एनालाइज स्टेबिलिटी एज फार एज फ्लाइंग इज कंसर्न। हम थोड़ा सा फ्लाइंग के फिजिक्स को या फ्लाइंग के मैकेनिक्स को या उसके विज्ञान को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज ऑल अबाउट फ्लाइंग, एंड ह्यूमन बींग्स हैव अप्लाइड देयर इंटेलिजेंस एंड दे हैव बीन एबल टू इन्वेंट एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन कैसे उड़ता है हम देखते हैं। वी हैव गॉट एरोफॉयल विंग्स, जिसके द्वारा एयर जो होती है वो नीचे जाती है, जिसके कारण वो एरोप्लेन को एक लिफ्ट मिलता है। और जब वो लिफ्ट लेकर उठ तो जाती है और पूरा जो एरोप्लेन का जो ग्रेविटी होता है उसको एक इक्विलिब्रियम में सेट करता है। जो टर्बो इंजन होता है उसका एग्जॉस्ट पीछे की तरफ बहता है, जिसके कारण देयर इज अ थ्रस्ट फोर्स विच हेल्प्स टू मूव फॉरवर्ड, एंड हियर द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज अ ड्रैग थ्रू एयर रेजिस्टेंस, एंड दैट्स हाउ इट्स इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो माई डियर फ्रेंड्स, एरोप्लेन इज अ मिरेकल, इट्स अ ग्रेट इन्वेंशन थ्रू द डोमेन्स ऑफ साइंस। सिटिंग, वॉकिंग जो नेचुरल प्रोसेस है, उसके विज्ञान को समझते हुए मनुष्य ने कितना ब्यूटीफुल इन्वेंशन किया। और जस्ट इमेजिन कीजिए कितने सारे लोग एक साथ बड़े स्पीड से हम ट्रैवल कर सकते हैं। आप और हमने काफी बार जीवन में यात्रा की होगी और हमने अनुभव किया है कि बस टेक ऑफ के समय पर और लैंड करते समय थोड़ा सा है ना हलचल हम महसूस करते हैं, बट समटाइम्स द टेक ऑफ एंड द लैंडिंग कैन ऑल्सो बिकम वेरी वेरी स्मूथ। लेकिन what we have seen is when we are flying in the high skies around 30,000 feet, 35,000 feet, hum ye anubhav karte hain ki hum itna speed mein travel karte hain lekin humko lagta hai ki we are absolutely in a still position, hum ekdam stable mehsoos karte hain। And believe me, us samay par ye aeroplane jo hai prithvi ko touch bhi nahi karta hai, and that is what is called as a dynamic equilibrium। My dear friends, and this is the last stage of meditation. पहले हमने महसूस किया I am the being. Second, I the being is very pure, peaceful and powerful. Third stage, अगर मनुष्य एक एरोप्लेन को इतने सारे लोगों के साथ धरती से 35,000 फुट उठा सकता है दोस्तों, तो उसी तरह हम अपने मन को भी इस शरीर के कॉन्शियसनेस, इस देह देह के धर्म और इस कारोबार से थोड़ा समय हम डिटैच हो और अपने मन को उस परमात्मा, उस परम ज्योति के साथ जोड़े। जब हम अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी मुझ आत्मा के अंदर आने लगती है और हम स्थिरता और स्थित प्रज्ञ को अनुभव करते हैं। परमात्मा के साथ मेडिटेशन कैसे करते हैं उसका पहले हम एक मंत्र सुनेंगे और एक मिनट का मेडिटेशन करकर हम इस प्रोग्राम को अंत करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू सी ऑल ऑफ यू। लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल मंत्र एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर 1 मिनट। थैंक यू। ओम शांति। नमस्कार।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैशस्य संशयम्।
ओम शांति। चलिए कुछ क्षणों के लिए हम एक सुंदर यात्रा पर निकलते हैं। मैं अपने आप से बहुत प्यार से बात करता हूं। मेरे चारों ओर बहुत चुनौतियां हैं जो लहरों के स्वरूप में हैं, और मैं इन लहरों के बीच स्थित हूं। अब मैं अपने सत्य स्वरूप को महसूस करता हूं कि मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग, शांत, शीतल और शक्तिशाली हूं। मेरा मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। मेरे मन में सकारात्मक संकल्प चल रहे हैं जिससे मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है और जीवन की चुनौतियों को मैं पार कर पाऊंगा। मेरा दृष्टिकोण बहुत शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बनती जा रही है। मैं अपने मन के द्वारा कुछ क्षणों के लिए इस दुनिया से ऊपर ले जाता हूं और उस परमपिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि उनके पवित्र किरणों के सानिध्य में मैं सुरक्षित हूं। मैं बहुत हल्का और रिलैक्स्ड हो गया हूं। अपनी जीवन रूपी यात्रा को मैं बहुत स्नेह, प्यार और खुशी से जीने के लिए सक्षम हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार स्वामीनाथन जी का, जिन्होंने बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से हम सभी को अपने माइंड को स्टेबल करने के बारे में बताया। मैं आशा करता हूं आप सभी भी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मन को सशक्त और स्थिर बना सकते हैं। लुकिंग फॉर राइट थिंग्स एट द रॉन्ग प्लेस, इसके बारे में आपने भी अनुभव तो किया ही होगा। कभी कभार हम चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर सही जगह नहीं, गलत जगह। ऐसा अक्सर होता है, घरों में भी होता है। हम चीजें कहीं और रख देते हैं और कहीं और उन चीजों को ढूंढ रहे होते हैं, और अक्सर ऐसे ढूंढते ढूंढते हम गलत जगहों में भी पहुंच जाते हैं। वक्त तो जाया होता ही है मगर जो चीज हम ढूंढ रहे थे वो भी चीज नहीं मिलती। एडिक्शन भी एक ऐसी ही चीज है जहां पर हम सुख तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चैन तो ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं मगर वो चीज वहां नहीं मिल रही। इसी विषय पर जिन्होंने बहुत ही गहरा अध्ययन किया है वो है डॉक्टर सचिन परब। ये मेडिकल विंग के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और मुंबई में निवास करते हैं। आज ये मुंबई से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और बातचीत इसी विषय पर रहेगी। डॉक्टर सचिन परब टोबैको के बारे में अवेयरनेस लाने में, माय इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया के कैंपेन में और मेडिकल विंग के अनेकों कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। टेलीविजन के माध्यम से भी उन्होंने एडिक्शन और मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर अनेकों कार्यक्रम दिए हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनके विचार।
ओम शांति, मैं डॉक्टर सचिन परब मुंबई से बोल रहा हूँ। एडिक्शन के फील्ड में कई सालों से सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एडिक्शन बोलते ही लोगों के आंखों के सामने एक बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला या तंबाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, शराब पीने वाला या ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति आता है। लेकिन एडिक्शन केवल ये सब्सटेंस यूज नहीं है। आजकल हम सब जानते हैं कि लोगों को डिजिटल एडिक्शन हुआ, मोबाइल एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है, वीडियो गेम का एडिक्शन है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि गैम्बलिंग का एडिक्शन है, फूड एडिक्शन है, शॉपिंग का एडिक्शन है। तो एडिक्शन दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक जैसे बताया पदार्थों का नशा और दूसरा है बर्ताव का नशा या बिहेवियरल एडिक्शन। एडिक्शन एक ब्रेन की बीमारी है। आज हम ये जानते हैं और मानते हैं कि जैसे पहले कहते थे कि विल पावर की कमी है व्यक्ति के अंदर, लेकिन आज MRI स्टडीज से हमको पता चला है कि एडिक्शन प्लेजर सेंटर जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है उसका डिस्ट्रक्शन है। जब भी कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसके ब्रेन के अंदर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ऐसे एक एरिया होता है जहां से वो लिम्बिक कॉर्टेक्स PFC तक जाता है, तो ये पूरा एरिया में डोपामिन रिलीज होता है। और जैसे ही डोपामिन रिलीज होता है उसको अत्यधिक खुशी का या आनंद का अनुभव होता है, और ये सेंटर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति दुष्चक्र में फंस जाता है। हजारों एडिक्ट्स के केसेस देखने, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट के बाद मुझे पता चला है कि एडिक्ट्स को ठीक किया जा सकता है। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो टोटली प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, पर ये बायोलॉजी माना ब्रेन को चेंज करती है, इसीलिए हमको इसका इलाज करना जरूरी है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो ये जीवन भर रह सकती है और व्यक्ति का जीवन समाप्त भी कर सकती है। और ये कैसे काम करता है? आज का जो टॉपिक हमने रखा है एडिक्शन, लुकिंग फॉर राइट थिंग्स एट रॉन्ग प्लेस, सिग्मंड फ्रॉयड जिनको आधुनिक वैद्यक शास्त्र साइकियाट्री के पितामह कहते हैं, उन्होंने कहा है एडिक्ट्स आर लूकीज, उनको आनंद की तलाश रहती केवल वो गलत जगह पर देखते। तो एडिक्ट्स को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ब्रह्मा कुमारी वैद्यकीय प्रभाग मेडिकल विंग की तरफ से पूरे भारत में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मेरा भारत नशा मुक्त भारत है और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस। इसमें हमारा मुख्य जो फोर्स है, प्रेशर है या प्रायोरिटी है, वो है यूथ या स्कूल कॉलेज के बच्चे, इनको हमको बचाना है। ये इंडस्ट्री की टारगेट है, तो हम प्रिवेंशन में भी काम कर रहे हैं। मेरा स्कूल नशा मुक्त स्कूल, मेरा कॉलेज नशा मुक्त कॉलेज, और साथ में जो लोग नशे में फंस चुके हैं और जो ठीक होना चाहते हैं, उनको काउंसलिंग, राजयोग, मेडिटेशन और जहां जरूरत हो एडमिशन करके उनका इलाज कराया जाता है। और ये कैसे काम करता है? तो राजयोग एक साइंटिफिक मेथड है, इसके ऊपर भी संशोधन किया जा चुका है। भारत के हमने 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया है, क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे भाई बहने आते थे, हमने देखा कि जैसे वो राज्यों का अभ्यास करते हैं तो उनका पुराना से पुराना नशा छूट जाता है और विड्रॉल बहुत कम, ना के बराबर होते। तो हमको भी आश्चर्य लगा कि हमारा अपब्रिंगिंग, हमारी जो ट्रेनिंग हुई उसमें बताया कि विड्रॉल होता है। तो ये डिपेंडेंस है या एडिक्शन है, ये जानने के लिए हमने ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया और हमको बहुत आश्चर्य लगा कि 64% लोगों ने एक महीने के अंदर नशा छोड़ा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इनको मल्टीपल एडिक्शन थे, केवल तम्बाकू, बीड़ी सिगरेट, शराब नहीं, ड्रग्स भी थे, ऐसे कई थे। तो जब हिस्ट्री लेने लगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आई। उसमें का एक केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा खुद का दोस्त डॉक्टर हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई किया, तो हम सब जानते हैं हॉस्टल में रहने वाले लोगों को कई सारी आदतें लगती है, जिसमें अल्कोहल और तम्बाकू उसको आदत लगी थी। तो प्रैक्टिस करते वक्त भी वो इसका इस्तेमाल करता था। अभी 22 साल हो गए थे जो ये नशा करता था। तो एक दिन मैं उसके पास गया, उसको पूछा कि तू डॉक्टर है, तेरे को पता है कि ये नुकसान देने वाली चीज है, तू तो क्यों लेगा? तुझे पता है कि ये स्लो पॉइजन है, तेरे को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। हम सब जानते हैं एडिक्ट जो होते हैं वो अपने आप को सिद्ध करते हैं। उसने कहा मैं भी धीरे धीरे मरना चाहता हूँ। मैंने कहा पर इतना इजी नहीं है, आगे चल के आपको बीमारी भी हो सकती है, जिसमें बहुत दुख हो सकता है आपको और आपके घर वालों को। तो मैंने उसको पूछा कि तुझे मिलता क्या है? और उसने कहा कि जैसे ही वो सिगरेट पीता है या शराब लेता है, तम्बाकू लेता है, तो उसको किक मिलती है, शांति मिलती है। और मैंने उसको कहा बिल्कुल ठीक कहा, तुमको सिगरेट या शराब की जरूरत नहीं है, तुमको शांति की जरूरत है, जो तुम सिगरेट और शराब दे। तो उसने मुझे पूछा कि मैं क्या करूं? मैंने कहा एक तो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर, हो सकता है तेरा नशा छूट जाए। और कमाल हो गया दोस्तों, उसका 22 साल का एडिक्शन ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा सिखाए गए राजयोग एडिक्शन से 7 दिन के अंदर पूरी तरह से छूट गया और यही इसका परमानेंट इलाज है। उसको चाहिए थी शांति, खुशी, जो पदार्थ को मैं ढूंढ रहा था। जैसे उसको मेडिटेशन में उसका अनुभव हुआ, उसका नशा छूट गया। राजयोग मेडिटेशन कैसे नशा छुड़ाता है? तो इसके 2-3 मैकेनिज्म है। एक, जैसे ही लोग मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन के अंदर और पूरे बॉडी के अंदर भी एक केमिकल रिलीज होता है, जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। एंडोर्फिन माना एंड्रोजिनस मॉर्फिन। ये मॉर्फिन की तरह बहुत पावरफुल पेन किलर होता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ व्यक्ति को नशा छोड़ने पर होती है, वो माना दर्द होता है, विड्रॉल होता है, उसको सहन करने की शक्ति कम होती है। और यहाँ पे एंडोर्फिन मदद करता है कि वो नशा छोड़ने के बाद होने वाली तकलीफ को सहन कर पाते। कुछ लोगों को तो तकलीफ भी नहीं होती है, इतना एंडोर्फिन और बाकी के न्यूरोट्रांसमीटर के केमिकल रिलीज होते हैं। दूसरा, जैसे ही मेडिटेशन करने लगते हैं अच्छी अवस्था में, सीरोटोनिन और डोपामिन, ये दोनों केमिकल रिलीज होते हैं। ये दोनों खुशी के केमिकल है, तो उसको अंदर से खुशी का अनुभव होता है। तो जो खुशी वो पदार्थों में या किसी बिहेवियर में ढूंढता था, वो खुशी उसको नेचुरल नहीं मिल जाती, तो डिपेंडेंसी छूट जाती है। और तीसरा मैकेनिज्म जो ब्रेन के साथ रिलेटेड है, वो माना PFC, ये जो आगे का हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको हम कंट्रोलिंग पावर कहते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं, जिसका काम है समझाना और रोकना, तो ये हिस्सा भी शक्तिशाली होता है। मेडिटेशन से ग्रे मैटर बढ़ता है, ये भी स्टडीज में आ चुका है। तो ये तीन मैकेनिज्म ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया राजयोग, ये ज्ञान योग है। यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, कर्मों की गति का ज्ञान दिया जाता है, आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। तो जब व्यक्ति ये ज्ञान को यथार्थ रूप में इस्तेमाल करता है तो उसकी समझ बढ़ती है और उसको संग भी अच्छा मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी की जितनी भी शाखा है 140 देशों में, वहां पे कोई भी व्यक्ति नशा करके नहीं आता है, सभी नशे से मुक्त है। तो उसको एक पॉजिटिव कंपनी मिलती है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है। एक ऐसा ही ड्राइवर, उसको जब नशा छूटा, काफी सालों का नशा था उसका, भी 20 साल के ऊपर का नशा था, तो उसको पूछा तुझे इसे क्या मिला, और उसने भी 7 दिन के अंदर छोड़ दिया। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ आके पता चला मैं तो देवता हूँ और देवता ये नशा नहीं करते। तो ये ज्ञान की पॉइंट है कि हमारे संस्कार जैसे जागृत हो जाते हैं ध्यान करने से, राजयोग मेडिटेशन करने से, तो उसका स्वमान जागृत हो गया, सेल्फ रेस्पेक्ट, और आज वो सबके ड्रेस के बिगड़ कहीं नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है कि उसने अभी तक 70 लोगों का नशा छुड़ाया। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत के 21 राज्यों में ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। हमारे 17,000 के ऊपर भाई बहने इसका ट्रेनिंग लेके अपने अपने राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। राजयोग मेडिटेशन 140 से भी ज्यादा देशों में सिखाया जाता है और ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो साइकियाट्रिस्ट हैं और इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, फिर वो पदार्थों का एडिक्शन हो या बिहेवियर का एडिक्शन हो, आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज व्यक्ति को बांध सकती है। और हम मजाक में कहते हैं इसको तो एडिक्शन हो गया। एडिक्शन एक ब्रेन की बीमारी है और ब्रेन में चेंजेस होते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, एडिक्शन कैसा भी हो, नंबर वन इसको रोका जा सकता है, इट इज प्रिवेंटेबल। नंबर टू, इट इज ट्रीटेबल, इसका इलाज है। नंबर थ्री, इट चेंजेस द बायोलॉजी, माना ये ब्रेन को बदलता है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो जिंदगी भर रह सकता है। तो आज के दिन हम सबको ये बताना चाहेंगे, आप किसी भी एरिया में हो, भारत में या विश्व में, अगर आपके यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एडिक्शन है या उसका बिहेवियर एडिक्टिव है, जिसके वजह से उसकी पढ़ाई के ऊपर असर आ रहा है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर असर आ रहा है या उसके रिलेशनशिप्स के ऊपर असर आ रहा है, तो नजदीकी ब्रह्मा कुमारी शाखा से संपर्क करें। राजयोग मुफ्त में, फ्री में सभी सेंटर पर सिखाया जाता है और ये साइंटिफिक है। किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाना है तो हमारे मेडिकल विंग से संपर्क करें। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल है वो जो आपको नशा छुड़ाने में मदद कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आइए आज के दिन हम प्रतिज्ञा करें कि अपने जीवन को नशा मुक्त रखेंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके वजह से हमारा शरीर, मन, हमारे संबंध या हमारे वातावरण के ऊपर उसका बुरा असर पड़े। आप सब तो ब्रह्मा कुमारी की तरफ से राजयोग सीखने के लिए आमंत्रित करता हूँ और यहाँ पर ओम शांति। धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सचिन परब जी का, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े और उन्होंने इतनी रोचक बातें हमें बताई। माइंड बॉडी मेडिसिन के तीसरे और आखिरी दिन और संडे सुबह के इस सत्र में हम एक बहुत ही सुंदर गीत सुनने वाले हैं, मेरे बाबा है साथ। इस गीत को गाया है गायक हरीश मोयाल जी ने। एक युवा गायक हैं जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपने समर्पण के भाव को बड़े ही सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है। अगर हम ईश्वर को अपना साथी बना लें, ईश्वर को हम पिता समझकर उन्हें बाबा कहने लगे, तो शायद मुश्किलें इतनी महसूस नहीं होंगी। ये याद रखना कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान है, हमें हमारे जीवन की यात्रा में सरलता प्रदान करता है। मुंबई से हमारे साथ हरीश मोयाल जी हैं और ये बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करने वाले हैं, मेरे बाबा हैं साथ।
कभी छाव बनकर लहरों में कभी नाव बनकर धूप में कभी छांव बनकर लहरों में कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ है बाबा मेरे साथ मेरे बाबा है साथ जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्हा दीप बन के जले कांटों पे भी मेरे संग संग चले अब तो लगता है जन्नत बने हयात मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ है बाबा मेरे साथ मेरे बाबा है साथ है बाबा मेरे साथ मेरे बाबा है साथ
हरीश मोयाल जी का ये गीत आपने सुना धूप में कभी छांव बनकर लहरों में कभी नाव बनकर जब लड़खड़ाए कदम तो थामा है हाथ आप सभी अपने जीवन के उन घटनाओं को याद करें जब मुश्किलें थीं और तब किसी ने आपका हाथ थामा देखने के लिए कोई इंसान नजर नहीं आया मगर ईश्वर ने आपकी मदद की हो उन घटनाओं को याद करने से एक नया रोमांच खड़ा हो जाता है ऐसा लगता है कि वो हमेशा साथ है और वो हमेशा हमारा हाथ थामे ही चलता है इसी कृतज्ञता के भाव को इस गीत में दर्शाने की कोशिश है और मैं आशा करता हूं यही भावनाएं आपके हृदय में भी जागृत हुई होंगी हरीश मोयाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर गीत को प्रस्तुत करने के लिए हैप्पी माइंड एंड हेल्दी हार्ट के बारे में आपने सुना है अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है हृदय रोग आज भारत में बहुत ही तेज गति से बढ़ रहे हैं एक जमाने में ऐसा माना जाता था कि हृदय रोग अमीरों की बीमारी है मगर आज ये नहीं देखती कि ये व्यक्ति अमीर है या गरीब ये भी नहीं देखा जाता कि उसकी आयु कितनी है पिछले दिनों कई रिपोर्ट्स में यह भी पढ़ा गया कि 30 साल की उम्र में भी लोग हार्ट अटैक्स के शिकार होने लग गए हैं बदलते जीवन शैली के कारण ये जो असर हो रहा है इसके बारे में कुछ काम करने की आवश्यकता है ऐसा ही एक अच्छा विचार डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को आया ब्रह्मा कुमारीज के साथ के उनके लंबे काल के अनुभवों को उन्होंने अपने मेडिकल करियर के साथ जोड़कर इस पर रिसर्च किया कोरोनरी आर्टरी डिसीज रिग्रेशन प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने मेडिटेशन मेडिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हार्ट डिसीजेस को कैसे काबू में किया जा सकता है उस पर एक अनोखी रिसर्च की उनके इन योगदानों के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र से भारत के राष्ट्रपति से भी अवार्ड्स दिए गए हैं एक बहुत ही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और एक बहुत ही प्रखर वक्ता जो आध्यात्म और आरोग्य दोनों विषयों पर बोलते हैं आइए आज हम उनसे सुनते हैं उनके विचार डॉक्टर सतीश गुप्ता
चलिए एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं आप सभी अपने को आत्मा निश्चय कर दोनों भृगुटों के मध्य मैं एक चमकता हुआ सितारा, जिससे सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को और पूरे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही हैं। ऐसा महसूस करें, मैं आत्मा अपने शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और आठों शक्तियों के साथ एक एक सेल को पोषित कर रही हूं, नरिश कर रही हूं। मैं आत्मा परमधाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूं और मेरे मीठे शिव बाबा सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस है। मैं उनकी संतान हूं। वो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं मुझ आत्मा को चार्ज कर रही हैं और मुझ आत्मा से ये सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति के आधार पर मेरे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को और शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रहे हैं। और मेरी एक एक कोशिका प्रफुल्लित होती जा रही है। महसूस करें, ये रियलाइज करें, ओम शांति। माय डियर कोलीग्स, माय स्वीट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का विषय है राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल फॉर हैप्पी माइंड एंड हेल्दी हार्ट। हम सभी समझते हैं, जैसे कि हम लोग सभी मेडिकल कोलीग्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हम जानते हैं क्या सारे विश्व में सभी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न हेल्थ केयर के बावजूद आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, गैर संक्रामक रोग जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर्स, सीओपीडी, माइग्रेन, एस्थमा, डिप्रेशन। आप सभी जानते हैं किस तरह से आज हम प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो इन सब का क्या इलाज हो सकता है? ये जो राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है, हम जानते हैं कि सभी जो बीमारियां हैं उनका मुख्य कारण है स्ट्रेस, तनाव। ये सब साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं। साइकी मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी, अर्थात पहले हमारे मन में आती हैं और फिर शरीर में आती हैं। तो ये जो हमारा जो साइकी है, हमारा मन है, ये जब तक हैप्पी नहीं होगा तब तक हमारा हार्ट हेल्दी नहीं हो सकता है, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो राजयोग का अर्थ क्या है? क्योंकि मुख्य बात है हमारा मन, जो मन में जो हमारे विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति से हम टीम भी कह देते हैं। मन के चार एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम इंग्लिश में टीम कह देते हैं। अगर हम पहला थॉट अक्षर लेते हैं, थॉट्स, पहला थॉट्स अर्थात संकल्प, इमोशंस दूसरा अर्थात भावनाएं, और तीसरा एटीट्यूड अर्थात वृत्ति, और चौथा मेमोरीज अर्थात स्मृति। तो मेरी जो सातों एनर्जी, मुझे आत्मा की सातों एनर्जी है, वो टीम के माध्यम से ही शरीर में जा सकती हैं। अगर मेरी टीम नेगेटिव हो जाए, मेरा मन दुखी हो जाए, मन अनहैप्पी हो जाए, तो ये एनर्जी मेरे शरीर में एंटर नहीं कर सकती। आत्मा में भले एनर्जी हो किंतु शरीर में एंटर नहीं कर सकती। और ये सातों एनर्जी शरीर की हर कोशिका के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाएं हैं, उनको सबके लिए आवश्यक है सातों एनर्जी। और इसी तरह से आंखों के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, मुख के लिए, त्वचा के लिए, पूरी सारे एक एक सेल को आत्मा नरिश करती है। किंतु हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी जो इच्छाएं हैं, जो आज आप सुन रहे हैं कि आज टाइप ए बिहेवियर, हम सभी प्रेशर में रहते हैं, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हुई हैं जिसमें बड़ा क्लियरली ये बताया गया है कि कि जो टाइप ए बिहेवियर कॉरोनरी प्रोन बिहेवियर है, इसमें हमेशा आदमी प्रेशर में रहता है, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कॉम्पिटेटिव एग्रेसिव रहता है, पॉलीफिजिक होता है, एक समय बहुत सारे काम कर लेना चाहता है, ये कॉरोनरी प्रोन बिहेवियर है। ऐसे लोगों को तीन गुना से अधिक हार्ट की बीमारियां होती है, हार्ट अटैक्स आते हैं, ये ऐसे कई स्टडीज में प्रूव हुआ है। ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है, डायबिटीज भी ज्यादा होती है। तो ये जो टाइप ए बिहेवियर है, एंजाइटी है, हमेशा एक अनसर्टेनिटी की वो रहती है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे आजकल के टाइम में हम बहुत एंजाइटी देख रहे हैं लोगों में, है ना। तो ये फियर है, एंजाइटी वालों को भी अधिक, क्योंकि ये सारे जो मानसिक जो प्रेशर्स हैं, साइकोसोशल रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सारे कन्फाउंडिंग इफेक्ट डालते हैं हमारी साइकी पर, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, क्योंकि सब मल्टीप्लाई कर जाते हैं अंदर। तो अगर आप टाइप ए नेचर के हैं तो आपकी एंजाइटी भी ज्यादा होगी और आपको दो गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने के, या इवन एरिथमियाज होने के, वेंटिकुलर एरिथमियाज होने के। इसी तरह से अगर आपके अंदर एंगर है, जब काम आपके हिसाब से नहीं होता तो आप एंग्री महसूस करते हैं, और एंगर जो है उससे सिर्फ एंगर की वजह से 3.5 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के। ऐसी स्टडीज ने, इससे एंगर इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। ऐसे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। तो डिप्रेशन वालों को ये देखने में, जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन 55% चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं। इस वजह से आइसोलेशन है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट एंड सोशल लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। ऐसे लोगों को भी 3 गुना आइसोलेशन, दे फील आइसोलेटेड, अपने मन की बातों को, भावनाओं को वेंटिलेट आउट नहीं कर पाते हैं अपने साथियों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। तो ऐसे लोगों को भी अधिक हार्ट अटैक्स आते हैं। आपने सुना भी होगा, पहले कहा जाता था अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। तो आज जो रिकरेंट एंजियोप्लास्टीज, बार बार हमें इंटरवेंशन करानी पड़ती है, स्टेंटिंग करानी पड़ती है, भले हम मेडिकेटेड स्टेंट्स लगाते हैं, भले हम बाईपास सर्जरीज करते हैं, बट ये पिलेटिव है, इट्स नॉट द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। बट डिजीज जो हमारे बचपन से हमारे अंदर, जो 4-5 साल की उम्र से, स्पेशली 11 साल की उम्र से हमारे जो प्लाक्स बनने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब वो एक 70% सिग्निफिकेंट डिजीज होता है, हमें सिम्टम्स आने लगते हैं, या इवन 30% प्लाक, 20% प्लाक, 30-40% प्लाक, जो अनस्टेबल प्लाक होता है, जिसमें ज्यादा मात्रा में लिपिड होता है, वो क्रैक हो जाता है, और क्रैक होकर वहां थ्रम्बस बनता है और हार्ट अटैक, वो ट्रिगर्स हार्ट अटैक। ऐसे बहुत सारी स्टडीज आई हैं कि जब आप डेडलाइंस रखते हैं, अचानक बिरेवमेंट होती है, एंगर गुस्से का एक एपिसोड आता है, हॉस्टिलिटी होती है, हॉस्टाइल बिहेवियर, रिवेंजफुल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर इज रिवेंजफुल बिहेवियर, एक लगातार पॉइजनस इफेक्ट होता है, कैस्केड इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट चलता ही रहता है कंटिन्यूस, जब तक हम उसको माफ नहीं कर देते हैं। सिनिकल बिहेवियर होता है, हम दूसरों में अवगुणी देखते रहते हैं, पत्नी पति में देखते रहते हैं, पति पत्नी में देखता रहता है, माँ बाप बच्चों में, बच्चे माँ बाप में डिफेक्ट देखते रहते हैं, अवगुण देखते रहते हैं। तो ये जो आज नेचर जो हमारी बन गई है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हमारे इवेंट्स बढ़ जाते हैं और हमें रिकरेंट कॉरोनरी इवेंट्स होते रहते हैं, और हमें प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज तेजी से होता रहता है। इसी खाली ये इसके लिए कारण नहीं है, ये ब्लड प्रेशर डायबिटीज को भी बढ़ाते हैं, हमारी जीआरडी भी बढ़ाते हैं, एस्थमा भी बढ़ाते हैं, स्किन डिजीज को भी बढ़ाते हैं, है ना। तो ये सारी बीमारियां, जितनी भी एनसीडीज हैं, ये सब फैक्टर्स वहां पार्ट प्ले करते हैं। तो ये सब हमारे मन में चलता है, हमारे विचार, पहले इस तरह के विचार चलते हैं, फिर उसके बाद भावनाएं बन जाती हैं, इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस, और जब उसी इमोशन में हम ट्रेवल करते रहते हैं, उससे वाइब्रेशन निकलते हैं, और उसी के वाइब्रेशन हमारे आसपास घूमते रहते हैं, और उससे जब उसी थॉट्स में हम लगातार उसी भावनाओं में रहते हैं, तो हमारी एटीट्यूड चेंज हो जाती है, वृत्ति बन जाती है, सर्कल बन जाता है, उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, और फिर हमारे उससे हमारी विजन ही, हमें दुनिया ही वैसे दिखाई देने लगती है जैसे हमारे अंदर होता है, जो विचार, जिस तरह के विचार हो रहे होते, फिर उसके अनुसार हमारे विजन बन जाते हैं, और विजन से फिर हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल, हमारे घर का एटमॉस्फेयर, हमारे ऑफिस का एटमॉस्फेयर, हमारे चैंबर का एटमॉस्फेयर, क्लिनिक का एटमॉस्फेयर, वो तो पेशेंट को आते ही वो फील होता है जो मेरा एटीट्यूड होता है, जिसे कहते हैं पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। तो अगर स्पिरिचुअल लेवल पे हो कि मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये मैं भी ह्यूमन बींग हूं, ये भी बींग, ये मैं भी बींग विद दिस बॉडी हूं, और ये भी एक बींग विद दिस बॉडी, जिसमें एक एलिमेंट है, वो मेरे पास उसकी इलाज के लिए आया है, हेल्प के लिए आया है। तो ये भावना से जम करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो वृत्ति ऐसी बन गई, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से वायुमंडल बनता है, इसे आभा मंडल भी कह देते हैं, और फिर जिस वायुमंडल में जब हम कार्य करते हैं तो हमारी क्या बनती है, हमारे इंप्रेशंस बनते हैं। जैसे हमारी एटीट्यूड होता है, फिर हमारे वैसे जैसे लोग हमसे मिलते जुलते हैं, सिचुएशंस होते हैं, उसके अनुसार हमारे इंप्रेशंस बनते हैं, और वही फिर अनुभव बन जाते हैं, और वो फिर अनुभव अगर कई लोग उसको रीइन्फोर्स करते हैं तो हमारे बिलीफ सिस्टम्स मान्यताएं बन जाती हैं, आस्थाएं बन जाती हैं, और जब इसको बार बार करते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, हमारी हैबिट्स बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन होता रहता है। तो बेसिक कारण क्या है, हमारा मन है। इसलिए कहते हैं ना, एक हमारा जब हम बात करते हैं शरीर की बात करते हैं तो एक शरीर हमारा है ये स्थूल शरीर जो पांच तत्वों का बना हुआ है, आठ अंगों का बना हुआ है। एक शरीर हमारा और भी है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर हमारे मन का बना हुआ है। उसमें अंदर इंटेलेक्ट है, हमारी चेतना है, चेतना है और हमारा चित्त है अंदर, और उसके बाहर हमारा सूक्ष्म लाइट का बनी हुई बॉडी है, उसमें हमारी हैबिट्स। तो अगर हम कहें हमारी इंटेलेक्ट जो है, हमारी बुद्धि है, चेतना जो है हमारा इंजन है उस सूक्ष्म शरीर का, और ये सूक्ष्म शरीर मन से टीम से बना हुआ है, और ये जो हमारे संस्कार है एक तरह की उसके ऊपर ड्रेस है। तो इस तरह से हमारे ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की बात जब मैं करता हूं तो राजयोग का मतलब क्या है, राजयोग का अर्थ है कि राजयोग माना वो योग जिससे आत्मा राजा बन जाती है, किसकी, बुद्धि की, अर्थात चेतना में परिवर्तन आता है। जब मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा पिता से जो पावर हाउस सात एनर्जी का उससे जुड़ जाता हूं तो मेरे अंदर क्या होता है, वो सातों एनर्जी आ जाती है, मैं सातों एनर्जी का एम्बॉडीमेंट बन जाता हूं, मुझे आत्मा में सातों एनर्जी भर जाती है जिससे मैं बुद्धि को, मन को और संस्कार तीनों को मैं उसकी राजा बन जाती हूं, मैं आत्मा उसका राजा बन जाती हूं। अर्थात अब बुद्धि चेतना मेरे हिसाब से चलती है, अब मेरे अंदर बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस नहीं रहता है और मैं मेरी चेतना बदल जाती है, और जब चेतना मेरी बदलती है तो मैं अपने को एक ट्विंकलिंग स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आई नो हु आई एम, ये समझ में आ जाती है मैं स्टार हूं, यहां बैठ के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे मैं आत्मा बैठी हूं, और यहां बैठ के सात एनर्जी यहां से रिलीज होती है और सारी सेल्स को नरिश कर रही है, बॉडी को नरिश कर रही है, तो मैं आत्मा हीलर हूं, और ये शरीर मुझे मन को और शरीर को हील करना है, मन को टीम, मन की टीम को पॉजिटिव बनाना है और शरीर के हर सेल को नरिश करना है। जब मुझे समझ आ जाती है तो मैं आत्मा बुद्धि अर्थात मेरी चेतना में लगातार ये कॉन्शियसनेस रहने लगती है और मेरी जो है टीम पॉजिटिव हो जाती है और मेरी सारे शरीर में एनर्जी सातों एनर्जी जाने लग जाती है। तो मेरी बुद्धि मन और संस्कार की मैं मालिक, आदतों की मालिक मेरी, यानी कि मुझे आदत है स्मोकिंग करने की, नॉनवेज खाने की, बहुत मीठा खाने की, डायबिटीज है तो मीठा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर तो भी बहुत नमक खा रहे हैं, नहीं, मन मेरी कर्मेंद्रिया, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरे कान, मेरे मुख, ये मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं और मेरे पूरे अंग भी मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसको बोलते राजयोग, राजयोग मेडिटेटिव अर्थात मेडिटेटिव, ये लगातार, इस मेडिटेशन का मतलब ही क्या है, योग मेडिटेशन का मतलब क्या है, योग मेडिटेशन का अर्थ है कनेक्शन, योग और मेडिटेशन इज कनेक्शन, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य क्या है, मेरा सत्य क्या, ह्यूमन बीइंग, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, राइट, तो बीइंग ह्यूमन शब्द कहां से आया है, ह्यूमन माना ह्यूमस से आया है, ह्यूमन वर्ड ह्यूमस लैटिन वर्ड, और बीइंग जो है लाइफ फोर्स है, तो जो ह्यूमस शब्द है उसका लिटरल मीनिंग सॉइल है और बीइंग का लिटरल मीनिंग है सोल। तो एक इंसान दो चीज से बना हुआ है, सॉइल एंड सोल। अगर स्पेलिंग्स में देखिए क्या फर्क है, सॉइल में है आई और उसमें है यू, तो अर्थात जब हम सॉइल कॉन्शियस, अर्थात हम बॉडी, हमारा ये आउटर सेल्फ जो हमारी बॉडी है, बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, जब हम अपने को ये समझ करके चलते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर, और मेटेरियल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये आउटर सेल्फ है हमारा, इससे आई आई अंदर है ना, तो आईनेस और माइनस, मैपन और मेरापन आता है, आईनेस से ईगो आती है और मैपन से, माइनस से अटैचमेंट आती है और एंजाइटी आती है, और जो मैपन से क्या होता है, ईगो और एंगर आता है और उससे अटैचमेंट और एंजाइटी पैदा होती है, अटैचमेंट और एंजाइटी से डिप्रेशन पैदा होता है और ईगो से और एंगर से हमारे अंदर और दूसरी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसी, सिनिसिज्म पैदा होता है, हॉस्टिलिटी पैदा होती है, और ये फैक्टर्स हमारे अंदर एक्ट करने लगते हैं आउटर सेल्फ कॉन्शियस होने से। इसकी वजह अगर हम सोल कॉन्शियस बन जाते हैं, अर्थात हम इनर सेल्फ कॉन्शियस बनते हैं, अर्थात हम जब यू मीन्स यूनिवर्सल, हम वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग आती है और हमारे अंदर हेल्थ की फीलिंग आती है। तो जब हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बॉडी रोल मटेरियल, तो ये अनस्टेबल, तीनों ही अनस्टेबल, बॉडी भी अनस्टेबल है, रोल भी अनस्टेबल है और मटेरियल भी अनस्टेबल है, इसकी वजह से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, इनसिक्योरिटी से हमारे अंदर फाइव वाइसेस पैदा होते हैं, कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों इनसिक्योरिटीज हैं बेसिकली। हम काम विकार माना देह की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, किसी अपनी देह की तरफ, दूसरों की देह की तरफ, क्रोध हमें अंदर से, हम अपने आप को डेंजर महसूस करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, तो हम गुस्सा करते हैं, हमारे हिसाब से काम में गुस्सा करते हैं। ग्रीड क्या है, बेसिकली डिजायर फॉर मोर फिजिकल थिंग्स, जो चीज हमें लाइक करते हैं उनको ज्यादा इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। अटैचमेंट क्या है बेसिकली, मोह क्या है, हम जो चीज हमें, जो लोग हमें पसंद है, हमारे बच्चे हैं, हमारे हमारे भाई बहन है, हमारे माता पिता है, हमारे पति पत्नी, उनको हम अपने साथ रखना चाहते हैं, हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। और ईगो क्या है, ये जो कुछ हमारे पास इकट्ठा हुआ उसका अहंकार हो जाता है। इससे पांच विकारों का जन्म होता है, उससे नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज, टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, एंजाइटी, फियर, सिनिकल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर, सस्पिशियस बिहेवियर, एज्यूमिंग बिहेवियर, स्किजोइड नेचर बन जाती है, सेंसिटिव इमोशनल हो जाते हैं, उससे डिप्रेशन हो जाता है। इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव टेंडेंसीज, जेलसी पैदा हो जाती है, है ना, इस तरह से हमारे अंदर ये चीजें पैदा होती है नेगेटिव, जिससे कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव, ओवर एक्टिव हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स कम हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं और हमारी एंडोथेलियम डिस्टर्ब होने लगती है, एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो जाता है और वो नाइट्रिक ऑक्सीजन निकलनी कम शुरू हो जाती है, बचपन से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, बड़े होते हैं तो हमारी आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल की कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है, ऑक्सीडाइज स्पेशली एलडीएल, अंदर तेजी से ट्रेवल करने लगता है, एंडोथेलियम से इंटीमा में जमा होने लगता है, धीरे धीरे हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। और साथ साथ क्योंकि हमारा मूड खराब रहता है, रॉन्ग मूड डिसाइड्स अवर फूड, तो मूड डिसाइड्स अवर फूड, रॉन्ग मूड तो रॉन्ग खाना खाते हैं, फिर फ्राइड जैम, जंक फूड, फास्ट फूड्स खाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है उसकी उसकी जो है वो अंदर से वो शांत नहीं रहता है तो नींद अच्छी नहीं आती, अल्फा स्लीप में रहते हैं, डीप स्लीप एंजॉय नहीं कर पाते, और ऐसे लोग फिर नींद, एक्सरसाइज देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, तो जल्दी नहीं उठते इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और ऐसे लोग एडिक्शंस के बन जाते हैं, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंक लेंगे, ड्रग्स लेंगे, चाय कॉफी ज्यादा पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, तो इस तरह से उनकी आर्टरीज ब्लॉक होंगे, उनको ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज हो जाती है। इसकी बजाय, इसके अपोजिट अगर आप सोल कॉन्शियस हो जाए, इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, तो क्या होगा, आप स्टेबल, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, स्टेबल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी महसूस करते हैं, तो आत्मा के सात गुण वहां मैनिफेस्ट करने लगते हैं, ज्ञान सत्य की समझ आने लगती है अंदर कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मा, एक परमात्मा की संतान, इसको मैं एपीसीडी कह देता हूं, आत्मा परमात्मा कनेक्शन, अर्थात मेरे सर्व संबंध परमात्मा के साथ है। आरती में तो हम गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, रियल में हमारे उसके साथ संबंध अनुभव करने की बात है। और डिफॉल्ट ड्रामा, सिस्टर रूपी ड्रामा है, इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, और अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% अभी तक एक्यूरेट पार्ट बजाया है, और अभी हम, अभी भी हम परमात्मा की डायरेक्शन पर अगर पार्ट बजाएंगे, उस समझ से, एपीसीडी की समझ से हम कार्य करेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और हमारे, हम क्या बन जाएंगे, मनुष्य से हम फरिश्ते जैसे, एंजेलिक बन जाएंगे, हमारी टीम 100% पॉजिटिव हो जाएगी, हम एंजल बन जाएंगे, फरिश्ता, एक डॉक्टर हीलर बन जाएगा, प्रॉपर हीलर बन जाएगा। और जब ऐसा बनेंगे तो हमारे अंदर, तो इस तरह की जब हमारे एनर्जी आएगी, तो इस ज्ञान एपी जितना इस एपीसीडी का अभ्यास करते जाए, हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी, दूसरी एनर्जी आत्मा की, तीसरी एनर्जी शांति, पास का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, हम वर्तमान में टिकना सीख जाएंगे, प्यार, प्यार माने अनकंडीशनली डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल वे ऑफ अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर एवरी ह्यूमन बींग इन द होम, इन द वर्किंग प्लेस और इन द वर्ल्ड। हर व्यक्ति को हम बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान से स्वीकार करेंगे और उनको उनको केयर करेंगे, तो इसको हम प्यार कहते हैं। ये स्पिरिचुअल, ऐसा स्पिरिचुअल लव हार्ट को चाहिए, सेल्फलेस लव चाहिए हार्ट को, और फिर जब हम ऐसी स्थिति में होंगे तो हमारी कंटेंटमेंट हमारे लाइफ में आने लगती है, और कंटेंटमेंट से हमारे अंदर खुशी आती है, हम इसे कहते हैं ना सुपर सेंस ऑफ जॉय की फीलिंग, डिजायर्स कम हो जाती है। जब डिजायर्स कम हो जाती है तो हम आनंद की स्थिति, अर्थात हम आत्मा अपने आप को डिटैच महसूस करती है इससे, बॉडी से और देह और देह की दुनिया से, ये स्थिति एक्सटेसी की स्थिति है, इसमें हम आनंद महसूस करते हैं। और जब आनंद की स्थिति आती है, इससे शक्तियां हमारे अंदर आती हैं, हम हमारा विवेक जागृत, विजडम, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाती है, जिससे हमें, हम सत्य को परख सकते हैं, सत्य, राइट और रॉन्ग की परख आ जाती है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, हम तब बड़ी बात को, पहाड़ जैसी समस्या को राई बना सकते हैं, और उसको समेट के मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, परमात्मा से कंबाइंड हो सकते हैं, हम सहन कर सकते हैं, कोई शरीर की तकलीफ है, समस्या परिवार में है, हमारे वर्किंग प्लेस पे समस्या है, उसको हम सहन कर सकते हैं, सहन करके समा सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और नई आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, और फिर भी सबको कॉपरेट कर सकते हैं, तो आठों शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ये जब आठों शक्तियां हमारे अंदर आती हैं, इससे सात एनर्जी और आठों शक्तियां आ जाती हैं, तो जब इनके मिश्रण में हमारे अंदर भर जाती हैं, तो जब हम कर्मों में आते हैं, तो हमारे अंदर ट्रूथफुलनेस हमारे चेहरे पर दिखाई देती है, हमारे अंदर पवित्रता दिखाई देती है, निर्भयता दिखाई देती है, हमारे में संतुष्टता दिखाई देती है, हमारे अंदर धैर्यता आ जाती है, हम मीठा बोलना सीख जाते हैं, हम मुस्कुराना सीख जाते हैं, तो इस तरह से हमारे अंदर नम्रता आ जाती है, तो इस तरह से हमारे दैवी गुण, ये हमारे वैल्यूज हमारे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देने लगती है, तो हम सदा स्ट्रेस फ्री रहने लगते हैं, हमारा मूड सदा अच्छा रहने लगता है। जब मूड अच्छा रहता है तो हम खाना, अब हम वो खाना खाते हैं, पहले हम खाना खाते थे खाने के लिए जीते थे, किंतु अभी हम जीने के लिए खाते हैं। अब हम हेल्दी डाइट खाते हैं, हम ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें ज्यादा वो खाते हैं, चपाती सब्जी खाते हैं, वेजिटेरियन फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, सब्जी रोटी खाएंगे, सलाद ज्यादा मात्रा में खाते हैं। तो इस तरह से हम एक भोजन बहुत प्यार से अधिक मात्रा में लेमन लेते हैं, टाइम पे खाते हैं, प्रॉपरली च्यू करते हैं खाने को, एंजॉय करके खाते हैं और महात्मा की याद में खाते हैं, और हम समय पर सोते हैं, जल्दी सो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और वहां सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं। तो टाइम पे सोना हमारे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं, और हमारे इतनी इतनी खुशी रहती है, हमारे पास टाइम रहता है एक्सरसाइज का, सुबह नहा धोके हम 6 बजे तक तैयार भी हो जाते हैं 5:30 तक, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें सुबह फ्रेश हवा होती है, फुल ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, फिर हमारा क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिला ना हमको, और फिर हम 8 बजे तक चुप रहते हैं, जिससे हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलीज हार्मोनियस हो जाता है, तो सारा दिन हमारा पीसफुल लवफुल हैप्पी बीतता है, और हमारे लिए इतनी खुशी रहती है, इतनी आनंद रहता है कि हमें बाहर से खुशी चाहिए ही नहीं, आनंद ना खाने में चाहिए ना चीजों में चाहिए, और हमें कोई स्मोकिंग करने की, चाय कॉफी पीने की, कोल्ड ड्रिंक पीने की, या शराब पीने की, या कोई ड्रग्स लेने की, नींद की दवाई लेने की हमें आवश्यकता ही नहीं होती है, और हम हेल्दी हैप्पी रहते हैं। हमारे एंडोथीलियम क्या करता है, हमारे उसको शांति प्यार खुशी मिलती है, एंडोथीलियम वापस नाइट्रिक ऑक्सीजन निकालना शुरू कर देता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल डिग्रेशन शुरू हो जाता है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट शुरू होता है, और हमारे ब्लॉक्स खुलने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा हैप्पी माइंड बना और हेल्दी हार्ट, अर्थात हमारे ब्लॉक्स खुलने शुरू हो गए, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होने लगता है। ऐसे हमने देखा बहुत सारे पेशेंट्स में, हम लगभग हमने माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल पब्लिश किया जो कि वर्ल्ड की टॉप 20 स्टडीज में आया, इसको हम कहते हैं 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी, ये हमने पब्लिश किया। फिर आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल अंडर पब्लिकेशन, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है अभी, उसके बाद डायबिटीज पे हमने स्टडीज की है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे स्टडी की है, होमा भी स्टडी किया है, और हमने पाया है 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स ने स्टडी किया है, और हमने पाया किस तरह से लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो लोगों के इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है लोगों का, उनकी जो इंसुलिन जो थे 80-80 यूनिट इंसुलिन थी, एक हफ्ते में उनकी इंसुलिन छूट जाती है, इनके शुगर इंस्पाइट ऑफ दैट 300-400 शुगर पोस्ट पेरेंटल होती थी, HbA1c इनका 12-13 होता था, आज उनका HbA1c 6 से कम हो गया, दे आर ऑफ इंसुलिन, दे आर मेनी ऑफ देम आर ऑफ एंटी डायबिटिक्स ऑल्सो। ऐसे ब्लड प्रेशर, इनको 4-5 टैबलेट्स लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल, आज उनके ब्लड प्रेशर ठीक हो चुका है, आज वो या तो हाफ टैबलेट पे ही कंट्रोल्ड है, या इवन हाफ टैबलेट भी छूट चुकी है 10,000 पेशेंट्स में, इसमें तो 1,500 तो पेशेंट हमारे आज ऑफ एंटी हाइपरटेंशन है, 1,000 से ज्यादा पेशेंट ऑफ एंटी डायबिटिक्स हैं, उनकी HbA1c नॉर्मल हो गई है, डिसलिपिडीमिया ठीक हो जाता है, लोगों की एस्थमा ठीक हो गया, लोगों का माइग्रेन ठीक हो गया, लोगों का GERD ठीक हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब ये जो प्रोग्राम है राजयोग का मेडिटेटिव लाइफस्टाइल और 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी, खाली हार्ट के लिए नहीं है, हैप्पी माइंड और पूरी हेल्दी बॉडी, आपके मन और तन में जो भी बीमारियां हैं, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सब ठीक हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज को एड्रेस करता है। तो हमने देखा है पिछले 23 साल हमने होकर रिसर्च करते हुए, हमने DRDO के कोलाबोरेशन में डॉक्टर कलाम साहब से मिलकर स्टडी की, और हमने जो है इसके साथ मिलकर और 3 इंस्टीट्यूट थे, दिल्ली से GP Math हॉस्पिटल और मुंबई से ग्रांट मेडिकल कॉलेज ऑफ JJ हॉस्पिटल और अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल, BJ मेडिकल कॉलेज ऑफ सिविल हॉस्पिटल, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, तीनों कोलाबोरेशन से मिलकर, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको स्पॉन्सर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इस स्टडी को हमने आज हम यूज कर रहे हैं, आज भी हम हर साल लगभग 10 के आसपास ग्रुप्स करते हैं, जिसमें 7 दिन के लिए पेशेंट्स को विद स्पाउस बुलाते हैं, जिनको एंजियोग्राफिक डॉक्यूमेंटेड हार्ट डिजीज होती है, और उनको हम यहाँ प्रोग्राम दे रहे हैं, और उसके द्वारा उनकी राजयोग का मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, अर्थात इसकी जो मुख्य 3 बातें हैं, पहली बात है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम उनको क्योंकि हेल्दी शब्द बना ही 2 शब्द से, हील प्लस डाई, अर्थात हील योर सेल्फ। सारे प्लेनेट पे एक ही आदमी जो आपको हील कर सकता है, वो सिर्फ आप हैं, डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार, माता पिता, आपके पति पत्नी, बच्चे आपकी मदद कर सकते हैं, किंतु भगवान और इंसान में क्या फर्क है, इंसान आपकी 1 गुना मदद कर सकता है, किंतु भगवान आप अगर आप उसके श्रीमत डायरेक्शन पे चलते हैं तो भगवान आपको 100 गुना अधिक मदद करता है। तो पहली बात यह है। दूसरी बात है सेल्फ अवेयरनेस। अब मुझे अपने आप को हील करना है तो मुझे पता होना चाहिए हु इज द हीलर, हीलर कौन है, क्योंकि हेल्दी को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वस्थ। तो स्व माना इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं, बाहर वाला मैं तो ये सतीश गुप्ता है, ये आपका जो भी नाम है, जो भी आप मेल फीमेल है, वो बाहर वाला मैं है, किंतु अंदर वाला मैं क्या है, अंदर वाला मैं अर्थात आत्मा, इनर सेल्फ, और अस्थ माना कॉन्शियस अर्थात स्थित। तो आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित है तो आप स्वस्थ हैं, अर्थात आत्मा हीलर है, किसकी, आत्मा को हील करना है, मन को अर्थात टीम को हील करना है, और बॉडी के 80,000 कोशिकाओं, 8 अंगों को हील करना है, खाली हार्ट को हील नहीं करना है, मस्तिष्क की 16 कोशिकाओं को हील करना है, आंखों को हील करना है, नाक को, मुख को, त्वचा को हील करना है, लंग्स को हील करना है, इम्यून सिस्टम को हील करना है, हार्ट को हील करना है, लीवर को हील करना है, हमारी आंतों को हील करना है, हमारे हार्मोनल सिस्टम, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एडिनल और गोनेट्स को हील करना है, उसको सारी मसल्स और बोन्स को, ज्वाइंट्स को हील करना है, सभी लिगामेंट्स को हील करना है, दोनों किडनीज को हील करना है, कोलन को हील करना है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को हील करना है, हमारे जेनिटल सिस्टम को हील करना है, तो सारा सिस्टम जो हील करना है उसको, तो मुझे हील करना है, किसको हील करना है, मुझको। और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अर्थात मैं आत्मा, खाली मैं शरीर नहीं हूं। आज हम मॉडर्न हेल्थ केयर की प्रॉब्लम यही है, हम सिर्फ बॉडी का इलाज कर रहे हैं, जितनी दवाइयां हैं, सर्जरी है, फिजियोथेरेपी है, सब कुछ बॉडी के लिए, डाइट, एक्सरसाइज, जो कुछ बता रहे हैं वही उसको ही बता रहे हैं। नहीं, पर हम इंसान खाली बॉडी नहीं है, बॉडी तो मरने के बाद बनता है, इंसान मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, कम से कम 3 डायमेंशनल तो है उसकी, एक आत्मा है, एक मन है, एक शरीर है, तीनों के बारे में हमें जो है जानने की आवश्यकता है। तो परमात्मा जो है सत्य है, क्योंकि एम्पावरमेंट सत्य के द्वारा ही हो सकते हैं, गॉड इज ट्रूथ, एंड वो हमें कैसे टीच करता है, थ्रू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग। तो परमात्मा हमको पहले इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये हमें पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी होती है, ये हमें समझना पड़ता है आत्मा क्या है। आत्मा के पास 7 एनर्जी है, आत्मा के पास 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, और 7 एनर्जी है, जिस 7 एनर्जी से आत्मा मन के माध्यम से, मन क्या है, मन टीम है, और बॉडी के 8 अंग हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे डिटेल में हमको पता है कैसे बॉडी काम करते हैं, एनाटॉमी पता है, फिजियोलॉजी पता है, पैथोलॉजी पता है, बायोकेमिस्ट्री पता है, फार्माकोलॉजी पता है, हमें सारे हमने पार्ट्स और स्टडी किए हुए, हम डिटेल में जानते हैं हर बात को, तो हमें उसका सारा पता है। तो हमें इस और परमात्मा क्या है, परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है, 7 है, चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, वो जन्म मरण से परे, वो निराकार है। तो जब हम अपने को एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा समझ के परमात्मा पिता को याद करते हैं परम धाम घर में, जहां का वो रहने वाला, हम आत्माएं वहीं की रहने वाली हैं, तो 7 एनर्जी आत्मा में भर जाती है, और 7 एनर्जी फिर हमारी टीम, जब हम सत्य में टिकते हैं तो हमारी टीम अपने आप पॉजिटिव हो जाती है, और वो एनर्जी हमारे शरीर के अंगों में ट्रेवल करने लगती है। तो इस तरह से जब 7 एनर्जी को हम, जब 7 एनर्जी हर शरीर की हर कोशिका के लिए आवश्यक है, तो एक विशेष है, वो विशेष क्या है, ब्रेन के लिए कौन सी एनर्जी विशेष है, नॉलेज, सत्य की समझ, अर्थात एपीसीडी। जितना अधिक अपने को चलते फिरते, उठते बैठते आप आत्मा समझेंगे, परमात्मा, मैं परमात्मा की संतान हूं, उससे कंबाइंड होकर अपना कार्य करेंगे, और जितना एक एक संबंध की अनुभूति, स्पेशली 9 संबंध की अनुभूति करनी चाहिए पिता से, आत्मा, माता, पिता, टीचर, गुरु, सतगुरु, प्रिसेप्टर, बंधु, बड़ा भाई, सखा, दोस्त, साजन माना मोस्ट बिलेवेड, वो मेरा सबसे मोस्ट बिलेवेड है, और सर्जन, वो मेरा डॉक्टर है, इंजीनियर है, और मेरा वारिस है, अर्थात मेरा बच्चा भी है। तो 9 संबंध की अनुभूति उनके साथ मुख्य करिए, तो उसके द्वारा वो 7 एनर्जी उनके द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हम सुबह सुबह 4 से 5 अगर करें ना, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठे, मुंह हाथ धो लें, ब्रश कर लें, उठते ही गुड मॉर्निंग कर लें, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा गुड मॉर्निंग करें, ब्रश करके आप बैठ जाएं, और आधा घंटा कंबाइंड हो जाए परमात्मा से, और वो एनर्जी को आने दें, और अपनी टीम को 8 बजे तक आप चुप रहें, अपनी टीम को पॉजिटिव, हम परमात्मा के मावपे से मुरली कहते हैं, वो 100% पॉजिटिव टीम है। तो सुबह उठते ही अमृत वेला किया आधा घंटा, उसके बाद मुरली का अध्ययन करते हैं, और फिर 8 बजे तक उस टीम, उसी मुरली को, उसी टीम को बार बार रिवाइज करते हैं, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करते रहते हैं। तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज 8 बजे तक होता है, तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोनियस रिलीज हो जाता है। और जैसे 7 एनर्जी क्या होती है, जब हमारा कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलता है, तो 7 एनर्जी हमारी सेल्स में जाने लगती है अच्छे से, है ना, थ्रू टीम, हमारी टीम पॉजिटिव, हमारी, जैसे मुझे ज्ञान है, तो मुझे ज्ञान, मतलब मेरे विचार, मुझे ज्ञान के विचार, ज्ञान की भावना, पवित्रता की भावना, शांति की भावना, उसके द्वारा मेरे शरीर की सेल्स को नरिश करेगा, है ना। जैसे हार्ट को क्या चाहिए, ब्रेन को चाहिए ज्ञान चाहिए, एपीसीडी चाहिए, आंखों को क्या चाहिए, पवित्रता चाहिए, हमारे मस्तिष्क की 16 कोशिकाओं को चाहिए पवित्रता चाहिए, और फिर हमारे जो है लंग्स को चाहिए शांति चाहिए, हमारे हार्ट को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, सत्य प्रेम चाहिए, और हमारे लिवर को क्या चाहिए, खुशी चाहिए, आंतों को क्या चाहिए, अतिन्द्रिय सुख की अनुभूति चाहिए, कैसे कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, और फिर हमारे हार्मोन्स को आनंद चाहिए, हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एडिनल और गोनेट्स, इन 7 का हार्मोन्स की अगर बैलेंस चाहिए, तो 7 हार्मोन्स का बैलेंस कैसे होगा, जब आप आनंद की स्थिति में अमृत वेले सुबह सुबह 4 से 5 टिकते हैं, तो उससे हमारा 7 हार्मोन्स का जो हार्मोनियस रिलीज होता है, हमारा जीवन ऑर्केस्ट्रा एक संगीतमय जीवन बन जाता है। तो हमारा कॉर्टिसोल बैलेंस में 8 दिन निकलता है, तो हमारा जीवन संगीतमय बनता है। और फिर हमारी मसल्स बोन, इनको आठों शक्तियां चाहिए, हर ज्वाइंट को इनको शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सातों एनर्जी मिलकर टॉक्सिन्स को लीवर किडनी के द्वारा बाहर निकालती है, पसीने की ग्रंथि के द्वारा बाहर निकालती है, कॉलन के द्वारा, आंतों के द्वारा बाहर निकालती है, और सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। तो इस तरह से हमारी सातों एनर्जी मिलकर टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। और सातों एनर्जी का जब हम उसको फोकस करके यूज करते हैं, हमारी लेजर एनर्जी हीलिंग एनर्जी बन जाती है। तो उस हीलिंग एनर्जी से हम कोई भी अंग को हील कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल से क्या बन जाता है, हैप्पी माइंड, हमारी टीम पॉजिटिव हो जाती है और हमारा हार्ट हेल्दी हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत ध्यान से सुना। आप इस राजयोग मेडिटेशन को सीख लीजिए, अनुभव करिए और प्रैक्टिस करिए। अभी तक 10,000 लोगों की, जिन्होंने एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड सीएडी पेशेंट्स जो थे, कई लोग बाईपास करा के फेल हो चुके थे, कई लोगों के एंजियोप्लास्टी 7-7 बार एंजियोप्लास्टी, 2-2 बार बाईपास हो चुके थे, और वो भी उनके आज ब्लॉक्स खुल गए। आज वो बहुत क्वालिटी, पिछले 20 साल से 22 साल से 21 साल से 15 साल से कोई 10 साल से कोई 8 साल से इसके द्वारा बहुत ही अच्छी जीवन बिता रहा है। उनके ब्लॉक्स खुल चुके हैं, वो बहुत उनको दिलवाले कहते हैं। वो सारे भारत में, विदेशों में जाकर के सेवा कर रहे हैं और सारे विश्व में। ये एक दिलाराम, परमात्मा का नाम दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाला शिव बाबा है दिलाराम, और हम सबको उन्हें दिल वाले। आप सभी डॉक्टर्स भी दिल वाले हैं ना, सभी के पास हार्ट है। तो ये जो बात है, ये जो टॉक थी, सभी दिल वालों के लिए थी। तो आप सब कौन है, दिल वाले। ओम शांति। अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है 3D healthcare@gmail.com और हमारा वेबसाइट है 3DHealthcare.org। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का। माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के सुबह के इस सत्र का समापन यहीं होता है। आप सभी ने इन सेशंस को एंजॉय किया होगा। तीसरे दिन हमने अपने मन में बहुत सारे अच्छे विचार समेटे हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। शाम के सत्र में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।